मुख्य समाचारों में एसीटी सरकार द्वारा क्लबों को पोकर मशीनों को बंद करने पर भुगतान देने की योजना। न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी तट पर थाथरा बुशफायर के 4 साल। और भारत में आज मनाया जा रहा है होली का त्योहार। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार अनीता बरार के साथ। सबसे पहले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कहना है कि शुक्रवार को वो यूक्रेन में सहायता पहुंच और नागरिक सुरक्षा के लिए रूसी मसौदे के आह्वान पर मतदान नहीं करेगी। रूस के संयुक्त राष्ट्र के दूत ने पश्चिमी देशों पर उपायों के खिलाफ अभूतपूर्व दबाव के अभियान का आरोप लगाया है। रूस के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने दावा किया कि उनकी सुरक्षा परिषद के सहयोगियों को ब्लैकमेल और धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन राजनयिकों का कहना है कि ये वैसे भी विफल हो जाता, क्योंकि 15 सदस्यीय परिषद में से अधिकांश इस वोट से परहेज करते, क्योंकि इस मसौदा उपाय में रूस के अपने पड़ोसी पर इन्वेजन को स्वीकार नहीं किया गया था, लड़ाई को समाप्त करने पर जोर नहीं दिया गया या रूसी सैनिकों का वहां से हटने की बात नहीं थी। एक कॉरपोरेट वॉचडॉग ने सवाल किया है कि 2 रूसी कुलीन वर्गों के ऑस्ट्रेलियन संसाधन क्षेत्र से संबंधों पर प्रतिबंध लगाने में ऑस्ट्रेलिया को 3 सप्ताह क्यों लगे। द ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहना है कि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के तुरंत बाद अरबपतियों पर सैंक्शन लगाई जानी चाहिए थी। वे ओरिजिन एनर्जी और रियो टिंटो से भी प्रतिबंधों में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि ओलेग डेरिपस्का और विक्टर वेक्सेल्बर की उन कंपनियों में रुचि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओरिजिन एनर्जी फैल्कन ऑयल और गैस के साथ एक संयुक्त उद्यम में है, जिसमें श्री वेक्सेल्बर की एक सहायक कंपनी के माध्यम से 16% की हिस्सेदारी है, जबकि रियो टिंटो और रूस की रूसल एक क्वींसलैंड एल्युमिनियम कंपनी पर एक संयुक्त उद्यम में है। श्री डेरिपस्का के पास इस कंपनी का 44% हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्री मारिस पेन का कहना है कि 2 रूसी अरबपति प्रतिबंधों के इस नवीनतम दौर में लक्षित नहीं थे।
Today's listing includes the Russian National Wealth Fund, the Russian Ministry of Finance. With our recent inclusion of the Central Bank of Russia, we have now targeted all Russian government entities that are responsible for issuing and managing Russia's sovereign debt.
इस बीच अन्य सामुदायिक संगठनों को डर है कि ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक आपदाएं पहले से ही मौजूद आवास संकट को बढ़ा रही हैं। न्यू साउथ वेल्स दक्षिण तट पर एक बुशफायर से बचे लोगों का कहना है कि 4 साल बाद भी उनमें से कुछ अभी भी अस्थायी घरों में रह रहे हैं। 18 मार्च 2018 को थाथरा के छोटे से शहर में बुशफायर के बाद लगभग 70 घर नष्ट हो गए थे। सामुदायिक समूह बुशफायर सर्विसेज फॉर क्लाइमेट एक्शन के अध्यक्ष जो डॉट्स का कहना है कि तब से बीगा क्षेत्र में कुछ लोग अस्थायी आवास में हैं।
And it's heartbreaking for 2 reasons. One is there are still people not back in a permanent home 4 years on from that event. And at the same time we're watching yet more people in the flood areas go through the same traumas that my community went through 4 years ago. When so many of my friends and neighbors lost everything in the Tarapa bushfire.
इस बीच आवास सामर्थ्य और आपूर्ति यानी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड सप्लाई पर एक नई रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि पहली बार घर खरीदारों को डिपॉजिट के लिए अपने सुपरन्यूएशन का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। कर और राजस्व पर गठबंधन प्रभुत्व वाली स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि घर खरीदने की कोशिश करने वालों के सामने सबसे बड़ी बाधा है डिपॉजिट और सुपरन्यूएशन तक पहुंच इस ऋण के लिए आदर्श सुरक्षा होगी। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकारें स्टैम्प शुल्क को खत्म कर दें और इसके बजाय भूमिकर उपायों को लागू करें। जांच अध्यक्ष जेसिन फेलेंस्की का कहना है कि समिति ने ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए आवास के महत्व को समझा।
It matters because Australians keep telling us it matters. And at a time when it matters more than ever, we find that in this country that has more land than than any other continent in the world other than the penguins of the South Pole, where we have the highest average weekly earnings in the world, with the highest minimum wage in the world, We also have the least affordable housing in the world.
एसीटी सरकार ने कैनबरा में सामुदायिक क्लबों को अपनी गेमिंग मशीनों को सरेंडर करने पर उन्हें भुगतान देने की योजना की घोषणा की है। एसीटी अटॉर्नी जनरल और गेमिंग मंत्री शेन रैटनबरी का कहना है कि कैनबरा क्लबों को प्रत्येक गेमिंग मशीन प्राधिकरण के लिए $15,000 का भुगतान किया जाएगा और अगर क्लब अपनी सभी मशीनों को छोड़ देते हैं और पोकी फ्री बन जाते हैं तो भुगतान प्रति प्राधिकरण $20,000 तक बढ़ जाता है। श्री रैटनबरी का कहना है कि एसीटी सरकार क्षेत्र में पोकर मशीनों की संख्या को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन क्लबों की स्थिरता का समर्थन भी करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के प्रति नए सिरे से आह्वान हो रहा है कि वो कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न यानी वर्क प्लेस हैरेसमेंट पर रिस्पेक्ट एट वर्क रिपोर्ट की शेष सिफारिशों को लागू करने की कार्यवाही करे। द पावर टू प्रिवेंट कोएलिशन का कहना है कि कार्यस्थलों में उत्पीड़न को रोकने और सुरक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 8 विधायी सुधारों की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी में प्रोफेसर नरीन यंग का कहना है कि मूल निवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग विशेष रूप से कमजोर हैं और अक्सर बिल्कुल पीछे या इसे झेलते रहते हैं।
One is the constant racism and bias that is directed towards Aboriginal and Torres Strait Islander people in the Australian community and in day-to-day interactions. And we know that this happens at work. We have evidence and by way of the Gariella survey produced by UTS Jumbunna and Diversity Council Australia to indicate that this is, of course, not just anecdotal, that it is certainly the case.
ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन का कहना है कि वे फेसबुक को अदालत में ले जा रहे हैं क्योंकि कंपनी अपने मंच पर नकली विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार है। फेसबुक के मालिक मेटा पर घोटाले के विज्ञापनों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें दिखाया गया है कि डेविड कोच और डिक स्मिथ जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी योजनाओं का समर्थन करते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। ACCC के रॉड सिम्स का कहना है कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के पास विज्ञापन दाताओं के लिए एक अनुमोदन प्रक्रिया है और ये सक्रिय रूप से उन विज्ञापनों को अपने एल्गोरिथम के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को भेजता है।
Facebook's business model is to get people on the site for free and then the people on the site become the product they're selling to the advertisers who pay Facebook money. So Facebook is far from a dumb billboard in the town square. Facebook has active control at many stages, which is why we say the essence of this case is that Facebook did not do what it should have done to protect its users.
और भारत में आज मनाया जा रहा है होली का त्यौहार। वहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्यौहार पर देशवासियों को बधाई और शुभकामना दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। ये बसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी कामना है कि यह त्यौहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे। और श्री मोदी ने होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि आपसी प्रेम स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 73 सेंट और भारत के 56 रुपए के बराबर है। और खेल समाचारों में राफेल नडाल ने निक कैरियोस को ड्रामा भरे इंडियन वेल्स मास्टर्स क्वार्टर फाइनल में मात देकर 2022 में अपनी सही शुरुआत जारी रखी। 21 बार के विजेता ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 7-6, 5-7, 6-4 से जीत हासिल की और कैरियोस ने 2 घंटे 45 मिनट के इस मैराथन के दौरान न केवल अपने स्वयं पर गुस्सा दिखाया बल्कि भीड़ और अंपायर कार्लोस बर्नार्ड से भी जूझते हुए 3 रैकेट्स को तोड़ दिया। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। सिडनी में बौछारों में राहत, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।